Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मैं इस विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ रहा था। एक साल पहले ही पढ़ रहा था मैं वास्तव में। तो मैंने देखा कि उन्होंने जब विद्यालय की स्थापना की तो पहले उन्होंने विद्यालय के भाई बहनों से बहुत गहरी तपस्या कराई। उस समय लगभग 350-400 भाई बहनें थे। उन्हें 14 वर्षों तक 1936-37 से लेकर के 1950 तक उन्होंने अच्छी तपस्या कराई, क्योंकि उनके जेहन में भी ये बात थी कि जब तक व्यक्ति तपस्या नहीं कर लेता तब तक वो अपनी वृत्तियों को परिवर्तित नहीं कर सकता। उसके बहुत सारे स्वभाव संस्कार हो सकते हैं पुराने, उनके परिवर्तन में कहीं ना कहीं तपस्या मददगार होती है, और बिना तपस्या के वो व्यक्ति ओजस्वी भी नहीं बनता जिसे समाज की सेवा करनी है। यदि आप समाज में जाना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को छूना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए अपने प्रभाव में उन्हें लाना चाहते हैं, अर्थात अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो तपस्या अति आवश्यक है। इस बात को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गहराई से समझा था, इसीलिए विद्यालय की शुरुआत में ही तपस्या कराई, सबसे साधना कराई। और आज हम देख सकते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय विश्व के कोने कोने में पहुंच चुका है, और वो दादियां जो प्रारंभ में 350-400 भाई बहनों में शामिल थीं, वही आज सारे विश्व की इतनी सुंदर सेवा कर रही हैं, मानवता की सेवा कर रही हैं। हमें भी यदि आदर्श बनना है, समाज की सेवा के लिए खुद को तैयार करना है, तो अपने जीवन में तपस्या को और साधना को शामिल करना ही होगा। इसी की सुंदर चर्चा हम कल भी कर रहे थे, आज भी इस चर्चा को भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक्स
भ्राता जी। कल भी सुंदर हमारी चर्चा हो रही थी तपस्या पे, की तपस्या सचमुच बहुत आवश्यक है। एक विशेष बात भ्राता जी, अभी इस वर्ष ही क्यों ऐसा महसूस हुआ, वैसे तो लंबे समय से विद्यालय चला आ रहा है, प्रारंभ तपस्या से हुई थी, इस वर्ष ऐसा क्यों महसूस हुआ कि तपस्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ब्रह्मावत्सों को भी संसार को भी?
तपस्या वर्ष हम लोगों ने कई बार मनाया है, कभी उसको अव्यक्त वर्ष कहा। मुझे याद है सबसे पहले मनाया गया था 1973 में, जनवरी को तो हमने इतना सुंदर व्यतीत किया था, सभी लोगों ने पूरी जनवरी मौन व्रत धारण किया था। बाद में भी 93 को भी मनाया गया और उसके बाद भी मनाया गया, लेकिन अब ये ब्रह्मावत्सों में भी देखा गया कि बहुत सारी सेवाएं हो चुकी हैं, सेवाओं में बहुत समय अनेकों ने दिया है, अब स्वयं को परिवर्तित करके अपने को संसार के सामने एक मॉडल स्वरूप में स्थापित करने का समय आ गया है, ताकि लोग हम में भगवान को देख सकें, हमारे डिवाइन स्वरूप से उन्हें अपने को चेंज करने की प्रेरणा मिल सके। गिरावट हरेक ने अपने जीवन काल में देख ली है। द्वापर से त्रेता बहुत अच्छा था और सतयुग के तो कहने ही क्या। अब कलयुग जब समाप्ति की ओर है तो गिरावट तेजी से दिखाई दे रही, एक और विज्ञान का विकास, सारे संसार में चमक धमक चकाचौन, सुखों के घर घर में बहुत सारे साधन, धन संपदा में भी बहुत सारी वृद्धि, दूसरी ओर बढ़ती हुई समस्याएं, युवकों में बढ़ते हुए व्यसन, संबंधों में बढ़ता हुआ टकराव, और सबसे बुरी चीज बड़े हो या छोटे हो सब में तीव्रता से, मैं क्या शब्द यूज करूं, प्रकोप रूप में प्रवेश करती हुई काम वासना, सेक्सुअल फीलिंग्स, इस सब ने अब हमको ये प्रेरित किया कि संसार को अब तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। इसलिए हम में से बहुत लोग पहले से ही साधना कर रहे हैं, बहुत सुंदर कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 1008 आत्माएं ऐसी पावरफुल हैं जो बहुत श्रेष्ठ योगी हैं, जिनकी प्योरिटी रिमार्केबल है, जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बदल दिया है कि उन्हें देखकर दूसरों को भी सुंदर प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा लाख लोग ऐसे हैं जो साधनाओं के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी कई लाख बहुत अच्छा जीवन में चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन समय की ये मांग है कि अब ये खेल समाप्ति की ओर जा रहा है, अब युग परिवर्तन बहुत समीप है, ये युग तेजी से बदलेगा, इसलिए हम अपनी साधनाओं को संपन्न करें, क्योंकि सभी आत्माओं को वापिस वहीं जाना है जहाँ से सब आए थे। तो हम अपनी साधनाओं को संपन्न करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करें, ताकि लोग देख सकें कि जीवन में रहकर ही मुक्त हुआ जा सकता है, क्योंकि मुक्ति में जाने से पहले हमें यही मुक्त होना होगा। जो यहाँ मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद वो मुक्त कदापि नहीं हो पाएगा। इसलिए ये तपस्याओं की बात और प्रबल रूप से रखी गई है।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे हमें मुक्ति प्राप्त होगी तभी हम फाइनल मुक्ति तक जाएंगे, उसके लिए तपस्या की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पता जी, मैंने शुरुआत की थी कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी 14 वर्ष तक बहुत अच्छी तपस्या कराई थी। तो उस समय जो तपस्या कराई गई थी भाई बहनों को, जो आज हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, वो किस प्रकार की तपस्या थी? क्या उसी तपस्या को फिर से इस एक वर्ष में रिवाइज किया जाएगा?
वो तपस्या थी स्वयं को आत्मा बनाने की तपस्या। देहभान बहुत बढ़ चुका था, देहभान के कारण मनोविकार प्रबल होते जा रहे थे। आत्मिक स्वरूप में स्थित कराना, मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, ये भी आत्मा, सब आत्माएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, पहले पहले ये साधना कराई ताकि देहभान छूट जाए। फिर साधनाएं हुई स्वमान की, तुम देव कुल की महान आत्माएं हो, तो विष्णु स्वरूप हो, फिर ये साधना बहुत ज्यादा चली, पवित्रता की साधना बहुत अच्छी चली। लेकिन अब जो हम इस साल में कर रहे हैं वो है सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग जोड़कर उसकी शक्तियां स्वयं में भर लें, ताकि हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएं।
मतलब पुनः सभी तपस्या की ओर लौटें, ये प्रयास पुनः ब्रह्मा कुमारी इसका है, ताकि हम पुनः जो एक संस्कारों में परिवर्तन की बात करते हैं वो परिवर्तन आ सके। तथा जी, ये संस्कार परिवर्तन भी बहुत मूल रूप से बात बार बार निकल के आती है। आदतों की बात हम लगातार करते आए हैं कि आदतों से व्यक्ति परेशान होता है, कोई संस्कार छोड़ना चाहता है नहीं छोड़ पाता। तपस्या का कितना योगदान है अपने संस्कारों आदतों को बदलने में?
संपूर्ण योगदान है। देखिए, कोई व्यक्ति अपने क्रोध के संस्कार से स्वयं भी पीड़ित है, कोई ईर्ष्या द्वेष के संस्कार से स्वयं और दूसरों को परेशान कर रहा है, किसी को बुरा बोलने की आदत पड़ गई है। अब ये सभी संस्कार आज के नहीं, इस जन्म के नहीं, हो सकते हजारों साल के हों किसी के अंदर। अब वो इतने प्रबल हो गए हैं कि उनको केवल ये सोच कर के मुझे ये संस्कार बदलना है, बदला नहीं जा सकता। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिन्हें अपने संस्कारों का ज्ञान ही नहीं है, जिन्हें ये भी पता नहीं कि संस्कार बदलते भी हैं क्या, और अगर किसी को पता है तो उन्हें ये नहीं पता कि कैसे बदला जाए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छी अवेयरनेस दी जाती है, नॉलेज दी जाती है कि तुम्हारे मूल संस्कार क्या थे और उनमें कैसे गिरावट आई, उनकी डिग्री कैसे कम हुई, और अब किसी में एक बुरा संस्कार है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में ज्यादा भी हैं। तो पहले तो मनुष्य को चाहिए कि उसे अपने संस्कारों की अवेयरनेस हो कि ये मेरा बुरा संस्कार है और मुझे इसे बदलना है, कैसे बदलना है उसका ज्ञान हो। और ये सत्य है कि योग की शक्ति से संस्कारों को बदला जा सकता है। आत्मा अपने मूल संस्कारों को धारण कर लेती है जब लंबा समय योग अभ्यास होता है, पर ये याद रखना है, क्योंकि लंबा समय से संस्कारों में गिरावट आई है, हजारों साल से किसी का कोई गलत संस्कार पड़ा है, उसको कोई चुटकी समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट कैन टेक लिटिल टाइम, इसलिए धैर्यवत होकर साधनाओं के मार्ग पे चलना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए मुझे अपना संस्कार बदलना है तो अवश्य बदल जाएगा।
तथा जी, ये उतार चढ़ाव शायद इस वर्ष भी संभव है, जैसे पहले होता रहा होगा कि कभी हमें जीत मिली कभी हार हुई, तो शायद इस वर्ष में भी ये संभावना रहेगी कि कभी हमारा योग बहुत अच्छा हुआ, कभी बहुत अच्छी सफलता मिली, कभी फिर से उसी आदत के वश हम थोड़े से डाउन हो गए या हमारी हार हो गई। ऐसे में शायद फिर से मन उदास या निराश हो सकता है कि तपस्या वर्ष, इतनी साधना हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर से वही स्थिति आ गई। तो यदि खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति किसी की बन जाए तो उनके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 साल से साधना कर रहे हैं
जी,
कुछ 60 साल से, कुछ उससे भी ज्यादा, कोई एक साल का भी है, कोई 6 मास का भी है। इसलिए सभी के साथ एक सी स्थिति तो हो नहीं सकती। जिनको लंबा काल का अभ्यास है वो इसको एंजॉय करेंगे, जिनको अभी उतार चढ़ाव हैं उसको इस साल में भी उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य रहेगा कि हम सबको ऐसी सुंदर गाइडलाइन भेजें, ऐसा सबको क्लासेज कराएं, उन्हें प्रेरित करें कि जब उनके मार्ग में गिरावट आए तो वो कैसे जल्दी ही फिर से ऊपर चढ़ें, जब उनके मार्ग में निराशा आ जाए तो कैसे जल्दी वो उस निराशा के अंधकार से प्रकाश में आए। इसके लिए ज्ञान की भी जरूरत है और इन चीजों से घबराएं नहीं, ये मान लें कि साधना का पथ ही ऐसा है जिसमें उतार चढ़ाव, आशा निराशा, कभी हार कभी जीत, ये सब होता रहेगा। लेकिन अगर ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करते रहेंगे, यानी अपने अंदर ज्ञान का बल बढ़ाते चलेंगे, तो जल्दी इनसे पार हो।
कोई ऐसे 1, 2, 3 ठोस की पॉइंट या कोई ऐसे शक्तिशाली विचार बताइए जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया हो, उन विचारों को, उन संकल्पों को, उन अभ्यासों को कर ले तो सहज जल्दी बाहर आ जाए।
देखिए, कभी बहुत लोगों के साथ ये हुआ कि लंबा समय अमृत वेला में सोने लगा तो एकदम डाउन और खुशी नहीं,
निराशा हो गया कि अब होगा या नहीं,
अब होगा नहीं। उनको चाहिए कि वो इवनिंग के टाइम 6 से 8 के बीच कम से कम आधा घंटा भी बैठ कर योग साधना करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज, जब भी ऐसी गिरावट आ जाए, हमारे पास बहुत सारी क्लासेज हैं, सीडीज हैं, उनको सुने, बल्कि रोज ही सुनना चाहिए, तो आत्म जागृति रहेगी। और 5 स्वरूपों का अभ्यास तुरंत चालू कर दें, क्योंकि अप्स एंड डाउन होंगे जैसा हमने कहा, तो जैसे ही थोड़ी गिरावट अनुभव हो, रोज भी हो जाती है मनुष्य के जीवन में ऐसी स्थिति, 5 स्वरूपों का तुरंत अभ्यास करेंगे तो फिर से एक लिफ्ट मिल जाएगी। और कुछ समझ में नहीं आए तो स्वमान की बातों को याद करने लगे, और इसके अलावा कुछ समझ में ना आए, रोज रात को शिव बाबा के नाम एक पत्र लिखने लगे, छोटा सा 5-7 लाइन का, तो एक उमंग तो रहेगी ना मन में, ये छोटी छोटी चीजें अपनाएंगे तो मंजिल पर पहुंच ही जाए।
कई बार ऐसा होता है बता जी कि जैसे ये वर्ष तपस्या वर्ष अब मनाया जा रहा है तो कई बार उमंग रहता है कि हाँ बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद ऐसा होने लगता है कि जैसे पिछला वर्ष बीता या सामान्य रूप से जैसी दिनचर्या रही वैसी ही दिनचर्या अब भी रही, तो वो सामान्य स्थिति आ जाती है। क्या विशेष किया जाए ताकि एक अटेंशन बना रहे कि हाँ एक तपस्या वर्ष है और हमें इसे स्पेशल बनाना है, इसे स्पेशल बनाने के लिए क्या विशेष किया जाए?
हर व्यक्ति को अपने अंदर बहुत दृढ़ता रखनी चाहिए कि अब मुझे वो सब कर लेना चाहिए जो इस संगम युग पे ही किया जा सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं आकर हमारा गाइड बना है, परम सद्गुरु बना है। अब यदि हम नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। रोज ईश्वरीय महावाक्यों का ध्यान से श्रवण करें, कुछ अच्छी बातें लिखें, सेल्फ मोटिवेशन हर एक को मिलना ही चाहिए। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति कुछ त्याग अवश्य करे, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या नहीं होती। देखिए, तपस्या के ये 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग आधार हैं, त्याग और वैराग्य। फिर मैं वही बात कहूंगा कि ये सबसे नहीं होते। जो लोग ग्रस्त व्यवहार में ज्यादा लिप्त हो गए हैं, जो काम धंधों में उलझ गए हैं, त्याग और वैराग्य उनसे कोसों दूर चला जाता है। लेकिन पहले से, यानी अब से ही हम कुछ त्याग करके चलें, कुछ अपनी दिनचर्या को फिक्स करके चलें। और मैं छोटी सी बात कहूंगा, अपने लिए रोज 2 घंटे दें, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को। व्यस्तता तो बनी रहेगी, लेकिन अगर कुछ करना है तो समय अपने को देना पड़ेगा। ऐसी चीजें साथ लेकर चलेंगे तो ये उतार चढ़ाव कम आएंगे, और आएंगे भी तो हम इनको ओवरकम करने की हिम्मत जुटा पाएंगे।
मतलब एक दृढ़ता की आवश्यकता है कि जैसे सामान्य रूप से और वर्ष निकलते रहे हैं, समय निकलता रहा है, वैसे ये वर्ष ना निकले। अन्यथा आमतौर पर यही होता है कि समय निकलता चला जाता है और हमें लगता है कि हमें करना है और हम कर नहीं पाते। त्याग की बात आपने कही ब्रता जी कि त्याग से ही तपस्या संभव है, क्या क्या त्याग करें? एक तो है जो अच्छी साधना कर रहे हैं, कल भी हमारी बात हो रही थी कि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी हैं, क्या विशेष त्याग करें ऐसे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी भी और सामान्य जो घर में रह रहे हैं?
मैं जनरल बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो तो त्याग कर चुके हैं
जी,
लेकिन जो अति व्यस्तता है लौकिक चीजों में, उसमें से थोड़ा समय निकालना, उसमें कुछ चीजों का त्याग कर देना। जैसे कईयों को बहुत बोलने की आदत है, छोटे काम में लंबा समय लगाने की आदत है, वो काम 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है लेकिन वो आधे घंटे में पूरा करते हैं। ये सूक्ष्म त्याग, एक अच्छी तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करना, एक तो इसकी बहुत आवश्यकता है। दूसरा, जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं, ज्यादा खाने की इच्छा, रात को गरिष्ठ भोजन कर लेने की इच्छा, कुछ ऐसी चीज भी खा लेना जिससे सवेरे उठा ही नहीं जाएगा, वो भारी कर देंगी बॉडी को, गैसेज पैदा हो जाएंगी, सुस्ती लाएंगी, ऐसी चीजों का त्याग करना। दूसरा, कुछ व्यर्थ चीजें आजकल चल रही हैं, जैसे बहुत टीवी देखना, इंटरनेट में बहुत समय देना, उसको बहुत देर तक जगना, उन चीजों का थोड़ा त्याग करें। जो सूक्ष्म रूप देना चाहते हैं वो अपने लगाव का त्याग करें, कहीं उनकी बुद्धि अटक गई हो, कहीं वो भटक गए हो, उसका त्याग कर दें। इस तरह हर व्यक्ति जान सकता है कि किस चीज का त्याग करने से उनकी तपस्या के मार्ग में उनके कदम तीव्र हो सकते हैं, उसका वो त्याग करे, लेकिन स्वइच्छा से करे, किसी के कहने से नहीं, क्योंकि त्याग एक ऐसी चीज है जो जब तक स्वइच्छा से नहीं किया जाए वो त्याग सुखदायी भी नहीं होता, उस त्याग का बल भी मनुष्य को नहीं मिलता। इसलिए खुद चिंतन करके, भाई मुझे परमात्म सुख प्राप्त करना है, मुझे अब जन्म जन्म की कमाई कर लेनी है। मैं बीच में छोटी सी बात कह दूं, देखिए आजकल के बच्चों को आप देख रहे हैं जिनको अच्छी नौकरियां पानी हैं, कितनी मेहनत वो करते हैं, 7-7 साल 8-8 साल लगे हुए हैं, कोचिंग कर रहे, मेहनत कर रहे, एक अच्छी नौकरी मिले, 50,000 से शुरू हो, लाख से शुरू हो, ऐसा पैकेज मिल जाए, वैसा मिल जाए, कर रहे हैं। भगवान ऐसा भाग्य देने आया है कि 2,500 साल तक तो नौकरी करनी ही नहीं पड़ेगी, कमाना ही नहीं पड़ेगा।
तो बड़ी सुंदर बात,
तो मनुष्य को सोचना चाहिए इतना महान भाग्य मिलने जा रहा है, उसके लिए हम कुछ करें। तो थोड़ा सा त्याग करना इस भाग्य की भेंट में कुछ भी नहीं है, तो स्वयं को मोटिवेट करें, मुझे अब करना है, और इस चीज को आज से ही छोड़ देना।
इस चिंतन की आवश्यकता होगी बेटा जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति 2-3 दिन 1 हफ्ते उन चीजों से दूर रहता है त्याग करके, लेकिन संस्कार वश फिर से वहां पहुंच जाता है और ये करना शुरू कर देता है। शायद ये जो आप चिंतन कह रहे हैं कि इतनी बड़ी प्राप्ति होने वाली है, इसे सामने रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।
स्वचिंतन ही स्व उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। एक विद्यार्थी भी तो स्वचिंतन करता है ना, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे उससे आगे जाना है, और पिछली बार उसने मेरे से ज्यादा नंबर ले लिए थे, इस बार मुझे यहाँ यहाँ अपने को ठीक करना है, मेहनत करनी है। एक बिजनेसमैन भी स्वचिंतन करता है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा वो भी करता है, कोई अधिकारी है वो भी करता है, और योगी का तो प्रथम कर्तव्य है स्वचिंतन करना, अपने से बात करना, सेल्फ को मोटिवेट करना, क्या लेने आए हैं भगवान के पास, युगों से जिसकी इंतजार करते थे वो स्वयं आ गया, टीचर बनकर आ गया, सदगुरु बनकर आ गया, वो भाग्य बनाने आ गया, हमें स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ प्रारब्ध देने आ गया, हम क्या कर रहे हैं। दूसरा चिंतन भी कर सकते हैं कि जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं वो तो हमें साथ देंगे ही नहीं, इसका अर्थ नहीं कि बच्चों की केयर न करें, पर धन संपदा के पीछे मनुष्य भागता है, वो धन संपदा तो रखी रह जाती है, जब उसको भयानक बीमारी हो जाती है, जब उसको रात को नींद नहीं आती, जब वो समस्याओं से घिर जाता है, जब उसके युवा बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तब उसे लगता है कि इन सब का तो कोई भी महत्व नहीं है, लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो तो किसी और चीज का है। तो ये स्वचिंतन है, इस स्वचिंतन को करने वाला व्यक्ति बहुत सारे व्यर्थ चिंतन से मुक्त हो जाता है, और तब उसकी साधनाएं बड़ी सुखकारी हो जाती।
क्या इसके लिए भी कोई विशेष वक्त निकाला जाए बेटा जी, कि हम कहीं एकांत में चले जाएं, छत पे चले जाएं, सब कारोबार को बंद करके थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें और ये वाला चिंतन करें?
देखिए, पहले इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, अच्छा स्वमान और अच्छा ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन। फिर मनुष्य को एक आधा घंटा अपने लिए एकांत का निकालना चाहिए, तब अपने से बात होगी, दूसरी चीजें उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अन्यथा फिर वो कामकाज के संस्कार आकर उसको डिस्टर्ब करेंगे। और अगर कोई इस तरह के सिचुएशंस वाले हैं कि पानी के पास, वृक्षों के पास चले जाएं, आजकल बाग बगीचों की कमी तो बहुत हो गई है, पर कहीं बाग हो, नदी बह रही हो, उसके पास चले जाएं घंटा आधा घंटा, और स्वचिंतन करें इस जीवन में क्या देखा, इन आँखों से क्या क्या हमने देखा, इस जीवन में क्या क्या पाया, हम क्या क्या कर सकते हैं, भगवान ने हमारा श्रृंगार किया, उसने हमारी पालना की, तो प्रकृति के सामीप्य से मनुष्य के विचार सुंदर हो जाते हैं और ये स्वचिंतन मनुष्य को ईश्वरीय नशे की ओर ले चलेगा, योगयुक्त कर देगा।
बिल्कुल, मतलब इस चिंतन के साथ ब्रता जी अब एक बात समझ में आ रही है कि इस वर्ष में हरेक यदि जो साधक बंधु हैं वो ये कर लें कि डूज और डोंट्स की लिस्ट बना लें कि इस साल मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, तो शायद बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। तो ब्रता जी इसमें यदि आप कुछ देना चाहें कि डूज में 3 या 5 पॉइंट या डोंट्स में 3 या 5 पॉइंट्स, तो वो क्या होंगे ताकि सभी को
बहुत अच्छा। सबसे पहले मेरा ध्यान युवकों की ओर रहता है जिनमें साधना करने की शक्ति है
जी।
मैं ऐसे बहुत सारे युवकों को जानता हूँ, कुमार कुमारियों को, जो बहुत अच्छी साधना करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन वो राह भटक जाते हैं चलते चलते। वो जो डोंट डू की बात है, ये नहीं करना है हमें, उसमें टीवी और नेट पर ज्यादा समय नहीं देना है, बुरे संग से बिल्कुल बचकर रहना है, फ्रेंड्स बहुत अच्छे बनाने हैं। इन सब का लक्ष्य एक ही है कि मन निगेटिव ना हो जाए, मन में व्यर्थ संकल्प न चलते रहें, टाइम वेस्ट नहीं करना है और संसार की बहुत सारी इच्छाएं नहीं रखनी है, व्यर्थ की जो इच्छाएं, बेकार की इच्छाएं हैं। और डू में सवेरे उठकर थोड़ा सा अच्छा अभ्यास करना है, ईश्वरीय महावाक्य रोज सुनने हैं, अपने को रोज समय देना है, जो ईश्वरीय मर्यादा है उसका पालन करना है और ईश्वरीय सेवाओं में भी थोड़ा वक्त देना चाहिए। अपना चार्ट लिखना है, अपना एक सुंदर सिंपल 3 या 5 पॉइंट का चार्ट बना ले, ये सब करेंगे वो नहीं करेंगे। तो हमारे युवक जिन पर स्वयं भगवान की भी बहुत सारी आशाएं हैं और हम तो देखते ही हैं उनकी ओर, क्योंकि सभी ग्रस्त वाले तो बहुत श्रेष्ठ योगी नहीं बन सकते, पर कुमार कुमारियां बहुत श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं, वो इस स्थापना के कार्य में बड़ा भारी योगदान कर सकते हैं, उन्हें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
जी जी, और वैसे भी आप हमेशा इस बात पे फोकस करते ही रहते हैं ब्रता जी, ध्यान दिलाते रहते हैं कि बच्चे और युवा उनकी एकाग्रता बहुत अच्छी हो सकती है यदि वो थोड़ा सा अभ्यास कर लें, तो आप हर बार इसका एग्जाम्पल देते ही हैं। दूसरी बात ब्रता जी, आपने वैराग्य की भी बात कही कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक साधना या तपस्या सफल नहीं हो सकती या मन उसमें एकाग्र हो ही नहीं सकता, लेकिन आज ज्यादातर यदि हम देखें तो राग की ही हमारी स्थिति है, चाहे व्यक्तियों से हो, वस्तुओं से हो, अपने से हो, तो इस राग को वैराग में कैसे बदला जाए?
बहुत गुह्य विषय है वैराग का, ये विवेक युक्त भी होना चाहिए, ये किसी अचानक के कारण से नहीं होना चाहिए। जैसे अचानक कारण होते हैं, भाई समस्या आ गई, अरे भाई छोड़ो इन सबको, हमें तो
जंगल में चलो
ये वैराग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। भाई धन सारा समाप्त हो गया, ओ उदास हो गए, इस वैराग के साथ उदासी मिक्स होती है, इसलिए कई सन्यासियों के वो संप्रदाय उदासी संप्रदाय, उदास उदास, लोग हंसा करते हैं कि उदास रहते हैं कैसा। तो था वैराग की बात, विवेक युक्त वैराग्य, ज्ञान युक्त वैराग्य सदा चलता है। और मैं इसके लिए केवल 2 अभ्यास सजेस्ट करूंगा। ये संसार, ये खेल 84 जन्मों का, ये सुंदर चक्र अब कलयुग के एंड में आ गया है, अब ये समाप्ति की ओर है, अब हमें सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है अपने धाम। तो इस संसार को देखते हुए भी इस दृष्टि से देखेंगे। दूसरी बात, सबको आत्मा देखने की प्रैक्टिस, क्योंकि ये देह राग उत्पन्न करता है, वासनाएं उत्पन्न करता है, तो हम देह में बैठी हुई चमकती हुई आत्मा को देखेंगे। तो ये वैराग्य कार्य व्यवहार में रहते हुए, पढ़ते लिखते, अपनी जिम्मेदारी निभाते ही अपनाया जा सकता है।
बिल्कुल, चलिए बहुत सुंदर प्रकाश आपने दिया ब्रता जी। त्याग और वैराग्य इतने गूढ़ विषय हैं, गहन विषय हैं, इस पे तो शास्त्र भरे पड़े हैं, आपने बहुत सरल शब्दों में हमें बताया है, और भी प्रकाश जरूर आपसे लेंगे क्योंकि तपस्या हमें अब करनी ही है और सुंदर साधना के द्वारा बहुत सारी प्राप्तियां करनी है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब बात त्याग और वैराग्य की चल रही थी तो मुझे वर्तमान समय जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, दादी जानकी जी, उनकी बात याद आ रही थी। वो हमेशा कहती हैं, ना तुम्हें कहीं अटकना है, ना कहीं लटकना है, ना कहीं चटकना है, ना कहीं भटकना है। कितने सुंदर शब्द हैं। वो एक्सप्लेन करती हैं, यदि साधना करनी है, तपस्या करनी है, तो अटकोगे तो तपस्या नहीं हो सकती, भटकाओगे मन को तो भी तपस्या नहीं हो सकती, कहीं चटकोगे अर्थात अटैच हो जाओगे तो भी तपस्या नहीं कर सकते, और इसी प्रकार से कहीं लटक गए किसी व्यक्ति विशेष में तो भी साधना नहीं हो सकती। ये हम सब के लिए एक चेकिंग की बात है, क्योंकि यदि कुछ प्राप्त करना है तो हमें अपने आप को थोड़ा अलग तो करना ही होगा, तभी हम अपना मन, अपना ध्यान उस सर्वशक्तिवान पर एकाग्र कर पाएंगे और हमें उनसे जो प्राप्ति करनी है वो प्राप्ति कर पाएंगे। तो क्यों ना इस तपस्या वर्ष में बहुत गहराई से अपने ऊपर ध्यान दें और साथ ही तपस्या के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ें, ताकि सर्व प्राप्ति खुद भी कर सकें और सारे संसार को भी करा सकें। इस सुंदर चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में। नमस्कार।